آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔
پیش ہیں آج کے مکھیہ سماچار وشالی جین کے ساتھ۔ پردھان منتری موریسن نے نیوکلیئر سب مرینوں کے لیے ایک نئے پوت کی پشتی۔ بھارت میں درج ہوئے 5,000 سے کم دینک کورونا معاملے۔ اور آسٹریلیا کو مہیلا وشو کپ میں پاکستان کے خلاف بہتر پردرشن کی امید۔ اور اب خبریں وستار سے۔ پردھان منتری اسکاٹ موریسن نے اس بات کی پشٹی کی ہے کہ وہ آسٹریلیا کے پوروی تٹ پر ایک نیا سب مرین بیس بنانے کی یوجنا کر رہے ہیں۔ کیریبیلی ہاؤس سے لاوے انسٹیٹیوٹ کو ویڈیو کے ذریعے سمبودھت کرتے ہوئے شری موریسن نے کہا کہ یہ بیس موجودہ ویوستھاؤں کے اترکت بنے گا اور آکس رکشا سندھی کے انترگت آنے والی نئی نیوکلیئر پنڈبیوں کے لیے اپیوگ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نیا بیس بنانا ضروری ہے کیونکہ روس اور یوکرین کے تناؤ کے مد نظر آسٹریلیا پچھلے 80 سال میں سب سے گہن سرکشا خطروں کے بیچ گھرا ہے۔ شری موریسن نے کہا کہ کہیں اور کی گتیویدھیاں ہماری آنترک سرکشا کو پربھاوت کر سکتی ہیں اور کر بھی رہی ہیں۔
Threats in our region are proliferating from both state and non-state actors. Militarization is expanding and evolving rapidly. The specter from terrorism and all forms of violent extremism endures. The challenge from more surreptitious malign activities, espionage, disinformation, cyber attacks, foreign interference and economic coercion, it's mounting daily.
نیو ساؤتھ ویلز کے پریمیئر نے باڑھ گرست سمودایوں سے معافی مانگی ہے۔ راجیہ کے ناردرن ریورز علاقے میں کئی باڑھ پیڑتوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ راجیہ نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ باڑھ سہایتا کے لیے آبنٹت ہوئے ملینوں ڈالر پرشاسنک فیس میں ہی کھپ جائیں گے۔ آج سامنے آئے بجٹ ایسٹیمیٹ میں یہ بتایا گیا کہ فلڈ ریکوری کے نام سے آبنٹت ہوئے 434.7 ملین ڈالر میں سے لگ بھگ 20 ملین ان سہایتا ندھیوں کو بانٹنے کے سرکاری خرچے میں ہی لگ جائیں گے۔ لزمور میں 9 نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے شری ڈومینک پیروٹے نے کہا کہ وہ ناردرن ریورز ضلع کے ان ہزاروں لوگوں سے معافی مانگنا چاہتے ہیں جن کے گھر اور ویوسائے اس باڑھ میں تباہ ہو گئے۔
There's a lot of anger and a lot of frustration. We've had many communities up here in isolation and have felt abandoned. We're doing everything we can. We've set up 17 evacuation centres and we're going to be working day and night for weeks and months and years ahead. This is the most devastating scenes right across the northern rivers. You would never see anything like it.
پوروی تٹ پر لگاتار بارش اور طوفان کا قہر بنا ہوا ہے جس سے نیو ساؤتھ ویلز کی کئی ندیاں باڑھ کی کگار پر آ کھڑی ہوئی ہیں۔ رکشا منترالے کی ورشٹھ سینا کرمیوں کی کام کی جگہ پر سنسکرتی سمبندھت یوجنا پر 2 ہفتے لمبی سنوائی آج سے سڈنی میں شروع ہو گئی ہے۔ آسٹریلین ڈیفنس فورس کے کئی ورشٹھ ادھیکاری جن میں چیف آف آرمی لیفٹیننٹ بھی شامل ہیں رائل کمیشن کے سامنے ورشٹھ سینا کرمیوں کی خودکشی کے معاملوں کے چلتے گواہی دیں گے۔ کمیشن کے اسسٹنگ کاؤنسل کیون کانر ایس سی کا کہنا ہے کہ دیش کو یہ جاننے کا ادھیکار ہے کہ پیڑتوں کے پریواروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
The significance of defence members and former serving members dying by suicide cannot be ignored. It is a matter of very great significance. Indeed, the very existence of this Royal Commission recognises this. The suffering endured by the persons themselves who have died by suicide, their families, their friends and those around them is immeasurable.
ساؤتھ آسٹریلیا کے راجیہ چناؤں میں شروعاتی متدان شروع ہو گیا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ کئی متداتا اس بیلٹ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ساؤتھ آسٹریلین الیکٹورل کمیشن نے 37 ارلی ووٹنگ سینٹر ستھاپت کیے ہیں جو اگلے 2 ہفتے تک سچارو رہیں گے۔ چناؤ کمشنر مک شیری کا کہنا ہے کہ سبھی ارلی ووٹنگ سینٹر اور پولنگ بوتھ کورونا سے بچاؤ کے اچت پربندھ کے ساتھ کھولے گئے ہیں۔ सामाजिक दूरी बनाए रखना, अनिवार्य मास्क नियम, एकल प्रयोग पेंसिलें और पूर्ण टीका पा चुके चुनाव अधिकारी इन सेंटरों पर लागू होने वाले कुछ कोरोना बचाव के नियम हैं। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े सुपर एनुएशन फंड में से एक अवैर सुपर नियोक्ताओं से आग्रह कर रहा है कि वे अपनी लैंगिक वेतन समानता नीति यानी जेंडर पे इक्विटी पॉलिसी प्रकाशित करें। 1500 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया है कि इनमें से एक तिहाई कर्मचारी ऐसी संस्थाओं में काम करते हैं जहां ये पॉलिसी उपलब्ध नहीं है। 44% का कहना है कि उन्हें ये नहीं मालूम कि उनकी संस्था में ऐसी पॉलिसी है भी या नहीं। पिछले 4 दशकों में देश में लैंगिक वेतन असमानता में मामूली सुधार ही देखा गया है। वर्कप्लेस जेंडर इक्विटी एजेंसी के अनुसार 22.8% के पे गैप का अर्थ है कि महिलाएं पुरुषों के बनिस्बत लगभग $25,000 सालाना कम कमाती हैं। अवेयर सुपर के सीईओ डीएन स्टीवर्ट का कहना है कि इसका अर्थ ये हुआ कि महिलाएं रिटायरमेंट के समय पुरुषों के बनिस्बत लगभग आधी पूंजी पाती हैं और इस समस्या का जल्द अज जल्द हल होना ही चाहिए।
Look, I hope that employers really do begin to publish their gender pay policies and publish the percentage of women that they've got at group executives, because ultimately it isn't about being perfect. No one's expecting organisations to be perfect, but they are expecting organisations to actually have clear policies and clear plans in place to close the gaps.
पुलिस का मानना है कि आज सुबह सिडनी हार्बर ब्रिज पर हुए हादसा एक चोरी की गाड़ी के कारण हुआ था। एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि ये गाड़ी लगातार गलत लेन में तेज गति से चल रही थी, जिसके कारण कई गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। न्यू साउथ वेल्स पुलिस के सुपरिंटेंडेंट रोहन क्रैमसी ने 2GB रेडियो से कहा कि ये काली SUV चोरी की हो सकती है।
Do suggest to us, and police will allege that the Kluger may have been stolen early in the morning in the vicinity of Sussex and Goulburn Street. So that, you know, we're still putting it together, and would certainly ask anybody who has any information or may have witnessed the collision, or indeed the stealing of that Kluger this morning, to come forward and contact us and help us put it all together.
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। न्यूजीलैंड ने भी रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव पर बयान जारी किया है। न्यूजीलैंड का कहना है कि वे रूसी निवेश, वित्तीय लेनदेन और व्यक्तियों पर प्रतिबंध जारी करेगा। न्यूजीलैंड के कानूनों के तहत बड़े प्रतिबंधों के लिए संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी आवश्यक है, लेकिन फिलहाल उन्होंने कुछ रूसी नागरिकों पर प्रतिबंध जारी कर दिए हैं। प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन का कहना है कि ये प्रस्ताव मंत्रिमंडल को जल्द ही पेश किया जाए।
It would enable us to extend sanctions, though, to those who may be part supporting or involved in the decision making around this invasion. It would enable us also to put in specific measures around aircraft, maritime space, and so on.
Ukraine could संयुक्त राष्ट्र के उच्चतम न्यायालय से रूस पर त्वरित ये आक्रमण रोकने की कार्यवाही करने का आग्रह करेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि धमकाए जा रहे और अपनी मूल भाषा के आधार पर मारे जा रहे लोगों को बचाने के लिए रूस एक विशेष सैनिक कार्यवाही करेगा। श्री पुतिन का तात्पर्य पूर्वी यूक्रेन में रूसी भाषा बोलने वाले व्यक्तियों से था, पर यूक्रेन का कहना है कि रूस के ये आरोप गलत हैं और किसी भी सूरत में रूस का ये आक्रमण गैरकानूनी है। संयुक्त राष्ट्र के न्यायालय के नियम हालांकि सभी देश मानते हैं, लेकिन उनको लागू करने का कोई सीधा तरीका नहीं है। और अब खबरें भारत से। सरकारी सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से फोन पर बात करेंगे। इसके अलावा सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि पीएम मोदी आज दोपहर में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात करेंगे। ये समय भारतीय समय के अनुसार तय किए जाएंगे। बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमलों का आज 12वां दिन है। इस दौरान रूसी सेना यूक्रेन के कई शहरों पर आक्रमण कर चुकी है और यूक्रेन के राष्ट्रपति पहले ही भारत से अपील कर चुके हैं कि भारत रूस से बात करके ये हमले रोकने में मदद करे। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये पहल तब हुई है जब युद्धग्रस्त यूक्रेन से करीब 1.5 मिलियन लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। इसी बीच भारत यूक्रेन में फंसे नागरिकों को निकालने में लगा हुआ है। इसके लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ये ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाए गए ऑपरेशन गंगा की सफलता का श्रेय वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते प्रभाव को दिया है। दूसरी तरफ भारत में दैनिक कोरोना मामलों की संख्या 5,000 से नीचे चली गई है। ये एक राहत की खबर है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,362 नए मामले भारत में दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में इस वायरस के चलते 66 भारतीयों की मृत्यु भी हुई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक भारत में 178.9 करोड़ टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। भारत में वर्तमान एक्टिव केस यानी सक्रिय मामलों की संख्या 54,118 है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी सोमवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 56.78 रुपये और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 74 सेंट्स रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। मंगलवार को पाकिस्तान के विरुद्ध महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मैग लैनिंग ने अपनी टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की है। ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को इंग्लैंड को 12 रन से शिकस्त दी। 608 रन का रोमांचक मैच भी खेला और टूर्नामेंट की एक शानदार शुरुआत भी की। इसमें रेचल हेस के 130 रन और कप्तान लैनिंग के 86 रन शामिल रहे। इसी के साथ अलाना किंग और जेस जॉनसन के भी प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया की जीत मुमकिन हो सकी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने यह माना है कि वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में बनने वाले सबसे बड़े दूसरी पारी के स्कोर का दरअसल नियोजित प्रयासों का नतीजा नहीं थे। और अंत में एक नजर कल यानी मंगलवार के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल तेज धूप खिली रहेगी। यहां का अधिकतम तापमान 34 जबकि न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में धूप छांव का मौसम बना रहेगा। यह अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में भी बादल छाए रहेंगे जहां अधिकतम तापमान 21 और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में कल बरसात के आसार हैं। यहां अधिकतम तापमान 20 जबकि न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में कल तेज बारिश की आशंका है। अधिकतम तापमान 23 जबकि न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में कल अधिकांश रूप से धूप खिली रहेगी और अधिकतम तापमान 34 जबकि न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल बारिश के साथ तूफान की आशंका है। अधिकतम तापमान 33 जबकि न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिल्ली का अधिकतम तापमान 31 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।